नमस्कार, सभी का स्वागत करती हूँ।
नई समस्या, एक नई परेशानी हमारे सामने आ खड़ी हुई है और वो परेशानी है बाढ़। जी हाँ, बाढ़। बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिस पर किसी मनुष्य का वश नहीं चल सकता। ये एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसे आप रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, आप कुछ कर सकते हैं तो वो ये कि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप इस स्थिति में खुद को संभाले रख सकते हैं, अपने परिवार की और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। हालांकि अगर आप जानते होंगे कि बाढ़ के दौरान आपको क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति से निपटना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। आप अपनी रक्षा कर सकेंगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकेंगे। तो श्रोताओं, अगर आप एक ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहां पर बाढ़ के हालात हैं या बाढ़ आ रही है, तो आप सपाट तल पर ना रहें, यानी कि समतल जगहों पर ना रहें, किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएं जहां बाढ़ के पानी से आप बच सकते हैं। अगर घर से बाहर निकलने या घर खाली करने से पहले बाढ़ का पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में क्या करें? तो इस दौरान छत पर चले जाएं और किसी से मदद मांगें जो आपकी मदद कर सके। बाढ़ की स्थिति में खुद को अपडेट जरूर रखें, यानी कि खबरों को जरूर सुनते रहें कि बारिश कब होगी, कितनी ज्यादा बारिश होगी, किस हिस्से में, किस इलाके में बाढ़ आने की संभावना है, ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सके। और ऐसे में रेडियो एक सबसे अच्छा माध्यम है अपडेट रहने का। खुद को साफ रखें, ये बहुत अहम बात है। जिन इलाकों में बाढ़ आती है वहां पर साफ सफाई का ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। ऐसे इलाकों में बीमारियों का होना आम बात है। बीमारियां पनपती हैं और लोगों को अपनी चपेट में लेती हैं। तो ऐसे में खुद को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि आप बाढ़ के पानी में ना जाएं, क्योंकि इस पानी में हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं जिनके संपर्क में आने से आपको संक्रमण हो सकता है, यानी कि आप किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। अगर आप पानी के संपर्क में आते भी हैं तो अपने हाथ और पैरों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। बहते हुए पानी से खुद को जितना ज्यादा हो सकता है दूर रखें। देखिए, बाढ़ के दौरान पानी का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे बढ़ते हुए स्तर में तैरना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बहते हुए पानी से दूर रहें। अगर आप बहते हुए पानी में उतर कर आप सोच रहे हैं कि आप उस पार चले जाएंगे, तो यकीन मानिए ये अपनी जान के साथ खेलना होगा और कुछ भी नहीं, क्योंकि बहते हुए पानी का बहाव कब बढ़ जाएगा आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, खास तौर पर उन हालातों में जब आपको तैरना ना आता हो। जहां मना किया गया हो उस जगह पर ड्राइव बिल्कुल ना करें। अगर आप बाढ़ से निकलने के लिए ड्राइव कर रहे हैं और किसी क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण बोर्ड लगा हुआ है, तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, उससे आगे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वह इलाका बाढ़ संभावित क्षेत्र हो सकता है। वहां की स्थिति के बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वहां क्या हो रहा होगा, तो ऐसे इलाकों में जाने से बचें। देखिए, बाढ़ के बाद बीमारियों से निपटने के लिए हालांकि सरकारी स्तर पर भी बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, लेकिन हर बार तो आप दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। आप इस बात का इंतजार तो नहीं कर सकते ना कि सरकार कब आएगी, आपकी मदद करेगी। तो आपको करना क्या है? सबसे जरूरी बात ये है, बाढ़ के चलते बहुत सारी बीमारियां फैलने की संभावना होती है, जैसे मलेरिया, डेंगू, बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। अब जरूरी ये नहीं कि ये बीमारियां बाढ़ के तुरंत बाद फैल जाएं। अब ये भी मुमकिन है कि बाढ़ आने के कुछ हफ्ते बाद या महीने बाद ये बीमारियां आपको अपनी चपेट में ले लें और आपको पता भी ना चले, क्योंकि आप बाढ़ संभावित क्षेत्र में रह रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? जितना ज्यादा हो सके अपने आप को साफ रखें, स्वच्छ रखें। ऐसे में पानी में मच्छरों के पनपने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया ये बीमारियां बड़ी तेजी से फैलती हैं। बाढ़ के दौरान चूहों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। चूहों के मूत्र में लेप्टोस्पाइरा होता है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। यदि ये पानी में मिल जाए तो पानी को बहुत ही कीटाणुओं से भर देता है, और अगर आप उस पानी के संपर्क में आते हैं वो आपके शरीर के संपर्क में आते हैं और इससे बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। बाढ़ की वजह से श्रोताओं न सिर्फ मच्छर बल्कि कॉकरोच की संख्या भी बढ़ जाती है, पीने का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। यही वजह है कि हैजा, टाइफॉइड, दस्त लगना, उल्टियां आना, ये संभावनाएं जो हैं आपको आसपास देखने के लिए मिल जाएंगी। बाढ़ के पानी में जहां तक हो सके जितनी भी आप कम जाने की कोशिश करेंगे पानी में, उतना ज्यादा आपके लिए सही होगा। मुश्किल से अगर आपको लगता है कि आपको कुछ खरीदने जाना है तो सारा सामान आप एक ही बार में खरीद कर ले आए, बार बार उस पानी में चल करके आप ना जाए। ऐसा करने से पानी में जो कचरा, जो गंदगी, जो मलमूत्र मिला होता है वो आपके त्वचा के संपर्क में आता है, इससे आपके बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर आपको पहले से ही त्वचा संबंधी कोई समस्या है या कोई घाव है और उसको बाढ़ के पानी से आप बचाकर बिल्कुल रखिए, अगर उस घाव पर बाढ़ का पानी लगेगा तो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है। अपने घाव को साफ पानी से धोते रहें और उन पर पट्टी बांधकर उन्हें ढक कर रखें, और जब आप वापस घर लौटें तो अपने हाथों, पैरों, मुंह को अच्छी तरह से साफ करें। गंदे हाथों से किसी भी चीज को ना तो छुएं और खास करके बच्चों को बिल्कुल भी ना छुएं। अगर किसी प्रकार की कोई खाद्य सामग्री या फिर कोई दवाई बाढ़ के पानी के संपर्क में आने की वजह से भीग गई है तो उसका इस्तेमाल ना करें। डिब्बा बंद भोजन का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखें कि डिब्बे को आप अच्छी तरीके से साफ करें। पानी को हमेशा उबाल कर पिए। जब पानी आपने उबाल लिया, उसको ठंडा किया, जब वो सामान्य तापमान पर आ गया, उसके बाद आपने उसका सेवन कर लिया। दिन के समय जितना ज्यादा हो सके मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं, क्योंकि ध्यान रखिएगा बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। ऐसे में अगर वो बीमारी की चपेट में आए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। जब बाढ़ का पानी आपके घर से निकल जाए उसके बाद अपने घर के कोने कोने की सफाई अच्छे से करें। फिनाइल या फिर अन्य कोई भी कीटाणु मारने वाला लिक्विड आपके घर में उपलब्ध है, फिर चाहे वो डेटॉल हो, फिनाइल हो या फिर सादा सर्फ या साबुन हो, अच्छी तरह से घर को साफ करें, घर की स्वच्छता को बनाए रखें। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से नमी उत्पन्न हो जाती है, तो आपके घर में जो कपड़े हैं, जो बिस्तर हैं, उनमें भी नमी बन जाती है। उन बिस्तरों का, उन कपड़ों का आप इस्तेमाल ना करें, बल्कि पहले उन्हें धूप में सुखाएं। जब उनमें से नमी खत्म हो जाए तब उनका इस्तेमाल आप करें। बाढ़ के बाद जब बाढ़ हो चुकी है, जब पानी उतरने लग रहा है, धीरे धीरे पानी का स्तर कम हो रहा है, तो स्किन इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बारिश तो रुक चुकी है लेकिन पानी बहुत सारी जगहों पर भरा रहता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? नीम, ये बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। नीम के पेड़ आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएंगे। नीम के कुछ पत्तियां आप लें, उनको पानी में उबालें और उसके बाद उस पानी से आप नहाएं, और उसी पानी से अगर हो सकता है तो आप अपने कपड़े भी धोएं, खास करके छोटे बच्चों के कपड़ों को उसी पानी में धो करके साफ करें। जितना ज्यादा हो सके ताजा खाना ही खाएं और खाना गर्म खाएं, बासी खाना खाने से परहेज करें। और अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर या फिर अस्पताल में संपर्क करें। श्रोता, बाढ़ के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना जिन्हें करना पड़ता है वो है गर्भवती महिलाएं व छोटे बच्चे। ऐसे में यह आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उन बच्चों का खासकर ध्यान रखा जाए और उन महिलाओं की सुरक्षा को तवज्जो दी जाए। एक बात जिसका आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि आपका बच्चा बिजली से चलने वाली तमाम चीजों से दूर रहे, क्योंकि बारिश के समय इन वस्तुओं को छूने से झटका लगने का, करंट लगने का खतरा बना रहता है। अगर बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है, लगातार हो रही है, आपके घर में या आपकी बिल्डिंग में या फिर आपके फ्लैट में अगर पानी भर चुका है तो बिजली के मेन स्विच को आप बंद कर दें। चलिए बात करेंगे अब हम इमरजेंसी किट की। इमरजेंसी किट होती क्या है? ये एक ऐसी किट होती है जब कहीं पे बाढ़, भूकंप, आग जैसी अवस्थाएं या परिस्थितियां बनती हैं, तो ऐसे में कुछ जरूरी सामान होता है जो आपके पास होना चाहिए, इसे हम इमरजेंसी किट का नाम देते हैं। तो इस किट में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, इसे हम आपातकालीन किट भी कहते हैं। अगर आप बाढ़ प्रभावित इलाके में रह रहे हैं तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए आपके पास ये किट होनी चाहिए। इस किट में आप कुछ सामान रख सकते हैं, जैसे कि बैटरी से चलने वाली टॉर्च, टॉर्च के लिए अतिरिक्त बैटरी यानी कि एक्स्ट्रा सेल आप उसके लिए रखें, फर्स्ट एड किट यानी कि प्राथमिक चिकित्सक किट हम इसको बोलते हैं, इसमें कुछ जरूरी दवाइयां होती हैं जैसे डेटोल हो गया, पट्टी हो गई, बैंडेड हो गई, सर दर्द की गोली, बुखार की गोली, कुछ प्राथमिक चिकित्सा की दवाइयां हम इसके अंदर रखते हैं। आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए ड्राई फ्रूट जैसी चीजें आप अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होंगी और इन्हें अच्छे से पैक जरूर होना चाहिए ताकि इनमें हवा ना जाए, जैसे चूड़ा, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, जो भी आपके पास उपलब्ध है ऐसी चीजें आप अपने पास रख सकते हैं। माचिस और मोमबत्ती, जरूरी दस्तावेज इन्हें बिल्कुल भी ना भूले, आपके पास आपके जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया और कुछ कैश। इन सभी को एक पॉलिथीन में आप डालें और अच्छे से उस पॉलिथीन को सील कर दें ताकि उसमें किसी भी तरह से पानी ना जाने पाए। एक मोटी रस्सी, मजबूत जूते, बच्चों के लिए हल्के कपड़े और सीटी। अगर आप कहीं फंस जाएं तो ऐसे में आप उस सीटी को बजाकर अन्य लोगों का अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं ताकि लोग आपकी मदद के लिए वहां पर पहुंच जाएं। तो ये तो बात थी कि आप कौन सी किस तरह से आप इस किट को बना सकते हैं, आप इसमें अपनी जरूरत का और भी सामान जोड़ सकते हैं। तो चलिए श्रोताओं, अब बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। जी हाँ, जिसे हम NDMA के नाम से जानते हैं, NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन्होंने बाढ़ के दौरान सावधानी बरतने के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। वो क्या हैं? आइए जानते हैं। इन्होंने कहा है कि आपदा के दौरान सुनी सुनाई बातों पर, अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, खुद का और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें और इसके लिए जो निर्देश NDMA ने जारी किए हैं उन निर्देशों को सख्ती से पालन करें। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थल, सहायता के लिए अन्य स्थलों की जानकारी रखें। रेडियो और टीवी पर समाचार सुनने से आप सही अनुमान लगा सकते हैं, तो सिर्फ इन्हीं खबरों पर ध्यान दें, बाकी अफवाहों से खुद को बचाए रखें। बच्चों को बाढ़ के पानी से दूर रखें, क्योंकि ऐसे पानी में जानलेवा कीटाणु होते हैं जो बीमारियों का कारण बन सकते हैं। बाढ़ के दौरान सरकारी या गैर सरकारी संगठन के संपर्क में रहने से जान और माल के नुकसान को आप कम कर सकते हैं। पीने और खाना पकाने के लिए साफ पानी का प्रयोग करें। स्थानीय जल में क्लोरीन की गोलियों को डालें। जरूरी वस्तुओं और खाने की चीजों को सुरक्षित स्थानों पर जैसे कि ऊंचाई पर रखें। तो श्रोताओं, ये थे कुछ उपाय जिनके द्वारा आप अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। समय हमेशा एक सा नहीं रहता, ये समय भी बीत जाएगा। धैर्य रखें, हिम्मत ना छोड़ें, आस पड़ोस के लोगों की मदद करें, एक दूसरे को जागरूक करें। देखिए, जितना ज्यादा आप लोग मिलकर काम करेंगे उतना ही ज्यादा आप सुरक्षित रह पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप महफूज रह पाएंगे।
तो श्रोताओं, अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। नमस्कार।